एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं मेजबान एक।
और मैं हूं मेजबान दो। आज हम एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनके विचार शायद थोड़ा हिला दें, पर सोचने पर जरूर मजबूर कर देंगे।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आर्थर शोपेनहावर की, और हमारे हाथ में है द एसेंशियल शोपेनहावर, जिसे वॉल्फगैंग शिरमाकर ने संपादित किया है। ये किताब शोपेनहावर के गहरे और हाँ कभी कभी थोड़े मुश्किल लगने वाले विचारों का निचोड़ है।
और देखिए, आज के समय में जहाँ हम सब खुशी, सफलता और मतलब की तलाश में भाग रहे हैं, शोपेनहावर की बातें इच्छा, दुख और इनसे शायद परे जाने की संभावना बहुत काम की लगती हैं, है ना?
हाँ, मतलब ये सवाल कि क्यों हम हमेशा कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, क्या असल खुशी मुमकिन है, ये वो सवाल हैं जिन्हें शोपेनहावर बड़ी बेबाकी से उठाते हैं।
तो चलिए समझते हैं इस जर्मन विचारक को, जिन्होंने करीब दो सदी पहले जो कहा वो आज भी गूंजता है।
हाँ, तो शोपेनहावर 19वीं सदी के दार्शनिक थे, लोग उन्हें अक्सर निराशावादी कह देते हैं।
हाँ, कह तो देते हैं और कुछ हद तक ये सही भी है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उनके विचारों में बड़ी गहराई है।
बिल्कुल, सिर्फ निराशावादी कहना तो शायद थोड़ा आसान करना होगा। सोचिए, उनके काम ने फ्रॉयड से लेकर टॉलस्टॉय और आइंस्टाइन तक को प्रभावित किया।
और ये भी दिलचस्प है कि वो पश्चिमी दर्शन के पहले बड़े विचारकों में से थे जिन्होंने भारतीय दर्शन, खासकर उपनिषदों और बौद्ध धर्म को बहुत गंभीरता से लिया और अपने काम में शामिल किया।
हाँ, ये बात तो है। और इस किताब के संपादक वॉल्फगांग शिरमाकर,
ये खुद भी एक जाने माने दार्शनिक है। उन्होंने शोपेनहावर के भारी भरकम लेखन, खासकर उनकी मुख्य किताब द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन से जरूरी हिस्सों को चुनकर हमारे लिए पेश किया है। शाहरमाकर का कमाल ये है कि वो शोपेनहावर को म्यूजियम की चीज नहीं मानते। वो दिखाते हैं कि शोपेनहावर के विचार आज की समस्याओं को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं, जैसे ये चीजों के पीछे भागना या जीवन में खालीपन महसूस होना।
हाँ, मतलब उन्होंने मुश्किल विचारों को थोड़ा आसान बनाया है बिना उनका मतलब बदले।
बिल्कुल, तो ये किताब द एसेंशियल शोपेनहावर एक तरह से शोपेनहावर की दुनिया का दरवाजा है।
इसमें उनके दर्शन के हर पहलू को छूने की कोशिश है, कि असलियत क्या है, सही गलत क्या है, सुंदरता क्या है और जिंदगी को जिया कैसे जाए।
और किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला आइडिया ये है, इस पूरी कायनात के पीछे हर चीज के मूल में एक अंधी, बिना तर्क के लगातार जोर मारती हुई ताकत है। शोपेनहावर इसे कहते हैं इच्छा शक्ति या विल।
इच्छा शक्ति, विल, ये कोई भगवान या सोच समझकर काम करने वाली शक्ति नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक अंतहीन चाहत है, एक भूख जो कभी मिटती नहीं, ऐसा समझिए।
अच्छा।
और जिस दुनिया को हम देखते, सुनते, महसूस करते हैं, पेड़, पहाड़, लोग, हमारे अपने विचार, वो सब
इस इच्छा शक्ति का बाहरी रूप है, जिसे शोपेनहावर प्रस्तुति, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये ऐसा है मानो हमारी चेतना ने उस अंदरूनी ताकत को एक तस्वीर बनाकर हमें दिखाया हो। तो मतलब जो हम देख रहे हैं वो असलियत नहीं, बस उसकी एक शक्ल है।
हाँ, कुछ ऐसा ही। अब सोचिए, अगर असलियत एक ऐसी इच्छा है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, तो जीवन कैसा होगा?
जाहिर है, दुख से भरा हुआ।
बिल्कुल, शोपेनहावर का जवाब यही है, दुख से भरा हुआ। इच्छा पूरी ना हो तो दर्द, और अगर पूरी हो भी जाए तो कुछ देर की राहत के बाद खालीपन, बोरियत और फिर एक नई इच्छा का जन्म। ये एक अंतहीन सिलसिला है।
लेकिन क्या ये सिर्फ दुख की ही कहानी है या कुछ और भी है?
नहीं, किताब हमें आगे ले जाती है। शोपेनहावर बताते हैं कि कैसे कला और सुंदरता हमें इस इच्छा के जाल से थोड़ी देर के लिए आजादी दिला सकती है।
अच्छा।
हाँ, फिर वो करुणा यानी दूसरों के दुख को समझने पर आधारित नैतिकता की बात करते हैं, और आखिर में इच्छा शक्ति से पूरी तरह मुक्त होने के रास्ते की ओर भी इशारा करते हैं।
ये वाकई पश्चिमी और पूर्वी विचारों का संगम लगता है, कांट का असर भी और उपनिषदों और बुद्ध की गूंज भी।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ दर्शन नहीं, जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया है।
चलिए इन आइडियाज में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहला बड़ा आइडिया, दुनिया मेरी प्रस्तुति है, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है?
देखिए, इसका मतलब है कि हम दुनिया को वैसे नहीं जानते जैसी वो असल में है। हमारा दिमाग उसे समय, स्थान और कारण कार्य यानी कॉजालिटी के चश्मे से देखकर, समझकर हमें पेश करता है। सब कुछ हमारी चेतना में ही घट रहा है, हमारे अनुभव में।
ये बात थोड़ी कांट जैसी लगती है।
हाँ, लगती है। लेकिन शोपेनहावर एक कदम आगे जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या कोई तरीका है इस प्रस्तुति के पर्दे के पीछे झांकने का? क्या हम उस असलियत को, जिसे कांट ने वस्तु स्वयं कहा था, उसे छू सकते हैं? कांट ने कहा था नहीं, शोपेनहावर कहते हैं हाँ, एक तरीका है।
अरे वाह, वो क्या है?
हमारा अपना शरीर।
हमारा शरीर कैसे?
देखिए, बाकी सब चीजों को हम बाहर से देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन अपने शरीर को हम दो तरह से जानते हैं। बाहर से ये भी एक चीज है, पर अंदर से हम अपनी भूख, प्यास, दर्द, खुशी, अपनी हरकतों को सीधे महसूस करते हैं। ये अंदरूनी एहसास ही उस मूल इच्छा शक्ति का सीधा अनुभव है।
अच्छा, तो ये जो अंदरूनी चाहत या जोर हम महसूस करते हैं, वही वो कॉस्मिक इच्छा शक्ति है?
बिल्कुल, हमारा शरीर उस अंधी इच्छा का ही एक रूप है जिसे हम अंदर से महसूस कर सकते हैं। ये असलियत तक पहुंचने की हमारी निजी खिड़की है। और फिर शोपेनहावर इसी आइडिया को पूरी कायनात पर लागू करते हैं।
कैसे? मतलब पत्थर का गिरना, पौधे का बढ़ना, इसमें भी वही इच्छा शक्ति है?
हाँ, पत्थर का नीचे गिरना, पौधे का धूप की तरफ बढ़ना, जानवर का शिकार करना या अपनी जान बचाना, इन सबके पीछे वही एक अंधी, अतार्किक, लगातार कोशिश करती इच्छा शक्ति है। ये कोई सोच समझकर बनाया गया प्लान नहीं, बस एक अंतहीन ड्राइव है।
और यहीं से वो दुख वाली बात आती है फिर, है ना? क्योंकि ये इच्छा कभी शांत नहीं होती है।
सही पकड़ा। शोपेनहावर का वो मशहूर वाक्य है, जीवन एक पेंडुलम की तरह दर्द और बोरियत के बीच झूलता रहता है। इच्छा है तो उसे पूरा न कर पाने का दर्द, इच्छा पूरी हो गई तो क्षणिक संतुष्टि के बाद खालीपन यानी बोरियत।
और फिर तुरंत कोई नई इच्छा सिर उठा लेती है।
बिल्कुल, स्थायी खुशी उनके हिसाब से एक छलावा है।
सुनने में तो ये काफी निराशाजनक लगता है, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी बताया उन्होंने?
हाँ हाँ, रास्ते सुझाए हैं, पर वो आसान नहीं है। पहला है कला और सौंदर्य का अनुभव, जिसे वो कहते हैं एस्थेटिक कॉन्टेम्पलेशन।
अच्छा, कला और सौंदर्य कैसे मदद करते हैं ये?
जब हम किसी खूबसूरत पेंटिंग, संगीत के टुकड़े या प्रकृति के नज़ारे में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो क्या होता है? कुछ पल के लिए हम अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों, अपने मैं को भूल जाते हैं।
हाँ, ये तो होता है, जैसे बस वो सुंदरता ही रह जाती है और हम खो जाते हैं।
बिल्कुल, शोपेनहावर कहते हैं कि उस पल में हम इच्छा रहित ज्ञाता, विललेस सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बन जाते हैं। हम चीजों को उनकी सार्वभौमिक सुंदरता में देखते हैं, न कि अपनी जरूरत के हिसाब से। ये इच्छा शक्ति के जोर से एक छोटी सी पल भर की छुट्टी है।
और इसीलिए उन्हें संगीत सबसे ऊंची कला लगती थी।
हाँ, क्योंकि वो सीधे उस अंदरूनी इच्छा शक्ति की भावनाओं, खुशी, दुख, बेचैनी को बिना किसी कहानी या तस्वीर के जाहिर करता है। वो सीधे विल से बात करता है।
दिलचस्प। और दूसरा रास्ता, वो करुणा वाला?
हाँ, करुणा, कंपैशन। ये सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि गहरी समझ है। शोपेनहावर के अनुसार, जब हम किसी और को दुख में देखते हैं, तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि जो अंधी इच्छा शक्ति मुझे दुख दे रही है, वही उसे भी दुख दे रही है।
मतलब हम सब जुड़े हुए हैं।
हाँ, हम सब ऊपरी तौर पर अलग दिखते हैं, पर अंदर से उसी एक इच्छा शक्ति के शिकार हैं। उसका दुख असल में मेरा ही दुख है। ये समझ हमारे अहंकार को तोड़ती है, जो हमें दूसरों से अलग समझता है।
ये तो तत् त्वम् असि जैसा है, उपनिषदों वाली बात।
एकदम, और इसी समझ से सच्ची नैतिकता पैदा होती है। दूसरों को चोट मत पहुंचाओ, न्याय, और उनकी मदद करो, दया। ये नियमों या कर्तव्यों पर आधारित नैतिकता नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली समझ है।
और सबसे गहरा, सबसे मुश्किल रास्ता कौन सा है?
वो है जीने की इच्छा का पूरी तरह से त्याग। ये तब होता है जब इंसान दुनिया और खुद के दुख को इतनी गहराई से समझ लेता है कि वो जीवन की मूल इच्छाओं से खुद को स्वेच्छा से अलग कर लेता है।
किन इच्छाओं से?
खासकर यौन इच्छा, जिसे शोपेनहावर सबसे ताकतवर मानते हैं। साथ ही धन, शोहरत, आराम, इन सब से मोह छोड़ देना, ये एक तरह की तपस्या है।
और इसका नतीजा क्या होता है?
शांति।
हाँ,
एक गहरी शांति, स्थिरता। इच्छाओं का शोर थम जाता है। शोपेनहावर इसे बौद्धों के निर्वाण जैसा बताते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये आत्महत्या नहीं है।
हाँ, ये जरूरी है। आत्महत्या को वो क्या मानते थे?
उसे वो इच्छा शक्ति की हार नहीं, बल्कि उसकी हताशा भरी जीत मानते हैं। क्योंकि इंसान जीवन से नहीं, जीवन की खराब परिस्थितियों से भाग रहा होता है। इच्छा का त्याग जीवन का अंत नहीं बल्कि दुख देने वाली इच्छा का शांत हो जाना है।
लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कुछ कहा है उन्होंने, कुछ प्रैक्टिकल सलाह? ये सब तो बहुत ऊंची बातें लगती हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल, उनकी बाद की किताब पैरर्गा एंड पैरालिपोमेना में काफी कुछ है। वो कहते हैं कि हमारी खुशी तीन चीजों पर निर्भर करती है, हम क्या हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या दिखते हैं।
हम क्या हैं मतलब?
हमारा स्वभाव, हमारी सेहत, हमारी बुद्धि, हमारा चरित्र। हमारे पास क्या है मतलब पैसा जायदाद, और हम क्या दिखते हैं यानी हमारी इज्जत, दूसरों की नजर में हमारी इमेज।
और उनके हिसाब से सबसे जरूरी क्या है इनमें से?
सिर्फ पहली चीज, हम अंदर से क्या हैं। असली खुशी हमारे अंदर से आती है, एक शांत मन, अच्छा चरित्र, ज्ञान। बाहरी चीजें जैसे पैसा या शोहरत और दूसरों की राय, ये सब अस्थाई हैं और अक्सर चिंता ही बढ़ाते हैं।
तो सलाह क्या है?
वो अकेले में पढ़ने, सोचने, अपनी उम्मीदें कम रखने और बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ज्यादा अपने मन की शांति पर ध्यान देने की सलाह देते हैं।
यहीं पर उनका वो कथन भी आता है शायद, इंसान जो चाहे वो कर सकता है, पर वो क्या चाहेगा ये तय नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है?
बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी इच्छाएं कहाँ से आती हैं, ये हमारे काबू में पूरी तरह नहीं है। हम चुन सकते हैं कि अपनी इच्छा पर अमल करें या नहीं, पर इच्छा खुद कहाँ से उठ रही है वो हमारे वश में नहीं, वो हमारी फितरत का हिस्सा है।
तो अगर इन सब गहरे विचारों का निचोड़ निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? पहला तो शायद यही कि हमारी बुद्धि हमारी गहरी इच्छाओं की गुलाम है। हम सोचते हैं कि हम तर्क से चलते हैं, पर असल में हमारी भावनाएं और इच्छाएं हमें चलाती हैं। क्यों?
हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा, जीवन में दुख का होना तय है। ये कोई निराशा फैलाने वाली बात नहीं बल्कि उनके दर्शन का नतीजा है। इच्छा और बोरियत के बीच झूलना ही जीवन है। इसे समझ लेने से शायद हम जिंदगी से गैर जरूरी उम्मीदें पालना छोड़ दें।
सही बात है। तीसरा, करुणा। इसे दया भाव नहीं बल्कि ये समझना है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं, सब उसी इच्छा शक्ति के खेल में उलझे हैं।
और ये समझ हमें ज्यादा सहनशील और दयालु बना सकती है, खासकर हमारे जैसे विविधता भरे समाज में जहाँ इतने अलग अलग तरह के लोग साथ रहते हैं ना।
बिल्कुल। चौथी, कला और सौंदर्य की ताकत। ये हमें रोजमर्रा की चिंताओं और इच्छाओं से ऊपर उठाकर एक अलग शांत दुनिया का अनुभव करा सकते हैं।
शायद हमें अपनी भाड़दौड़ भरी जिंदगी में ऐसे पल ज्यादा खोजने चाहिए, बिना किसी फायदे के, बस सुंदरता का अनुभव करना।
और पांचवी, अंदरूनी दौलत का महत्व। असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है, हमारे ज्ञान में, हमारे चरित्र में, हमारे मन की शांति में।
शोपेनहावर के कुछ वाक्य तो सीधे दिल पर लगते हैं। जैसे वो शुरुआत में ही कहते हैं, दुनिया मेरी प्रस्तुति है। ये याद दिलाता है कि हम सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं जिसे हमारा मन बना रहा है। हमारा अनुभव कितना व्यक्तिपरक है।
हाँ, और वो पेंडुलम वाला वाक्य है, जीवन एक पेंडुलम की तरह दर्द और बोरियत के बीच झूलता रहता है। कितनी सच्चाई है इसमें। ये हमें खुशी के पीछे भागने की निरर्थकता का एहसास कराता है।
और नैतिकता पर उनका कहना, करुणा ही सच्ची नैतिकता का आधार है। ये नियमों और कानूनों से परे जाकर इंसानियत के रिश्ते पर जोर देता है। ये बहुत जरूरी है आज।
और वो इच्छा कर हो बेहरी बात, इंसान जो चाहे वो कर सकता है, पर वो क्या चाहेगा ये तय नहीं कर सकता। ये हमें हमारी अपनी इच्छाओं की प्रकृति और हमारी आजादी की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
सुनने में ये सब भले ही थोड़ा भारी लगे, पर रोजमर्रा की जिंदगी में ये बातें काम आ सकती हैं। जैसे अपनी इच्छाओं को समझना, अगर हम ये जान लें कि हर इच्छा पूरी होने पर भी हमेशा की खुशी नहीं मिलेगी,
तो शायद हम चीजों के पीछे भागना थोड़ा कम कर दें।
हाँ, आज के जमाने में जहाँ हर तरफ से और चाहिए का दबाव है, ये सोच राहत दे सकती है, थोड़ा संतोष आ सकता है।
सही बात है। और वो कला या प्रकृति का आनंद लेना, बिना किसी मकसद के बस संगीत सुनना या पार्क में टहलते हुए पेड़ों को देखना, ये छोटे छोटे पल हमें अपनी चिंताओं से दूर ले जा सकते हैं। ये एक तरह का दिमागी आराम है, माइंडफुलनेस जैसा।
बिल्कुल। और करुणा वाली बात भी बहुत प्रैक्टिकल है। जब किसी से झगड़ा हो या किसी पर गुस्सा आए, तो एक पल रुककर सोचना कि वो भी अपनी इच्छाओं और दुखों से जूझ रहा है, शायद हमारे गुस्से को थोड़ा कम कर दे। इससे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं।
हाँ, ये तो है। और सबसे जरूरी, अंदरूनी खुशी पर ध्यान देना, सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनने या दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय खुद पर काम करना, कुछ नया सीखना, अच्छी किताबें पढ़ना या बस शांति से बैठना, यह हमें ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है।
सही कहा, हमारी खुशी बाहरी चीजों पर कम निर्भर करती है फिर।
तो अंत में आपके लिए सबसे बड़ा सबक या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही इस चर्चा से?
मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक ये है कि शायद हम खुशी को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। शोपेनहावर की माने तो असली शांति ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि कम चाहने में और अपनी इच्छाओं के खेल को समझने में है। ये एक अलग तरह की आज़ादी की राह हो सकती है। ये थोड़ा मुश्किल है, पर शायद यही रास्ता है।
और मुझे ये बात हमेशा सोचने का मजबूर करती है कि एक कैसे जीवन के दुख को स्वीकार कर लेना भी एक तरह की ताकत दे सकता है। ये हमें झूठी उम्मीदों के बोझ से बचाता है। शोपेनहावर का रास्ता अंधेरा लग सकता है, पर शायद उसी अंधेरे में एक गहरी स्थिर शांति छिपी हो जो बाहरी हालात बदलने पर भी ना बदले। ये हमें जीवन की हकीकत का सामना करने के लिए शायद ज्यादा तैयार करता है। इसमें एक अजीब सा सुकून भी है।
हाँ, एक यथार्थवादी सुकून।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।